Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha, Shama Sundar Radha, Sundar Radhe. Jaya Gauranita, Gauranita, Gauranita. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitya Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Hari Bol. Jai Ho. Jai Ho. Jai. Jai. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Krishna Krishna.
Krishna Krishna.
Hare Hare.
Hare Hare.
Hare Rama.
Hare Rama.
Hare Rama.
Hare Rama.
Rama Rama. Hare Hare. Namah Om Vishnu Padaya. Krishna Prishtaya Bhutale. Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisheshaya Shunyavadi Paschata Deshatarine Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalyai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण।
भगवान श्री कृष्ण इस ब्रज धाम ब्रज मंडल को अपने गोलोक धाम से धरती पर लाए, और जो भौतिक जगत को चलाने वाली भगवान की शक्ति है उसको आदेश देते हुए कहते हैं, भद्रे गच्छ ब्रजम, ब्रज में जाओ हे भद्र, हे शुभ करने वाली, मंगल करने वाली, ब्रज में जाओ। तो ब्रज क्या है? बोला गौ गोपी अलंकृत, जहां गाय है, जहां गोप है, जहां गोपियां हैं, और अलंकृत शब्द लिखा। ये बड़ा आश्चर्य लगता है, भगवान के मुख से शब्द निकलता है, निकला है अलंकृत। अलंकार कहते हैं आभूषण को। तो आभूषण क्या है इस भूमंडल पे? सोने के हार आभूषण नहीं है, काने के कानों के कुंडल आभूषण नहीं है। ये धरती जिसके ऊपर गाय पाली जाए और उसकी सेवा करने वाले गोप हों, गोपियां हों, ये आभूषण है। गौ गोपी अलंकृत शब्द, बड़ा अद्भुत। भगवान ने ये शब्द कहा इस ब्रजमंडल में आने वाली देवी को भेजा है। तो कहते हैं गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिर अलंकृत। और जहां ऐसा वातावरण होगा वहां क्या होगा? रोहिणी वासुदेवस्य भार्या नंद गोकुले, ऐसे नंद गोकुल में वसुदेव की एक और पत्नी रोहिणी देवी रह रही है। अन्याश्च कंस संविघ्नः विवरेषु वसन्ति, जो नंद गोकुल में रह रही है कंस के भय के कारण। तो क्या करो, जाके बलराम जी को वहां ले जाओ। इसका मतलब धरती के ऊपर भगवान इस ब्रज को भेजते हैं, तो इस धरती के अलंकृत करने को, सुंदर करने को, आभूषणों के लिए बलराम जी को भेजते हैं, जिनका आयुधी है हल। उनके हाथ में हल होता है। इसका मतलब है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वो हमारे कृषि के आचार्य हैं। कैसे कृषि की जाए उसके आचार्य भगवान साक्षात, उसको शेष कहते हैं। जो काम भगवान कर लेते हैं वो ठीक है, जो बचे हुए काम है वो शेष करता है। तो बलराम जी को भेजते हैं। एक दृष्टि से बलराम जी गुरु भी हैं, विश्व गुरु हैं, आचार्य हैं, और आचार्य की शिक्षा क्या है? भूमि से जुड़े रहो, धरती का जो ये भूमि है, ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है, विष्णु पत्नी है, सबका पालन पोषण करने वाली है, तब ये गाय का रूप धारण करती है। ये पृथ्वी ही गाय का रूप धारण कर रही है। भौतिक रूप से आदि भौतिक तो ये पृथ्वी है, आदि देविक रूप में तो वो गाय का रूप है, और आध्यात्मिक रूप के रूप में तो वो भगवान विष्णु की पत्नी है। तो भगवान ने असल में अपने ही एक दृष्टि से पत्नी को, जो सबकी मां है, उसको भूमि के रूप में सबके पालन पोषण के लिए और गोद में बिठाने के लिए भेज दिया। तो श्री देवी लक्ष्मी है और भूदेवी लक्ष्मी है और भूदेवी पृथ्वी है, ये तो विष्णु पत्नी है और इसलिए पृथ्वी को हमारे शास्त्रों ने माता कहा है। ये पृथ्वी माता है जो सबका पालन पोषण करती है, सबका भरण पोषण करती है। सो इस धरती के ऊपर बलराम जी के बाद भगवान स्वयं श्री कृष्ण आए तो उन्होंने अपना मुख्य कार्य जो ब्रज में जितने 11 साल से दो एक महीने कम रहे, 10 साल 10 महीने के करीब रहे, तो ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ने गोपाल के रूप में ही अपना सारा कार्य किया। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण हमारे गौरक्षक आचार्य हैं और बलराम जी हमारे कृषि आचार्य हैं। ये दोनों गाय और कृषि कलम कहीं कह रहे थे, किसी राजा के सभा में किसी ने जाके पूछा कि कौन से पशु का दूध सबसे उत्तम होता है, तो बड़े विद्वान ने कहा भैंस का। सबने आश्चर्य से कहा कि आप कैसे कहते हो भैंस का दूध सब पशुओं में अच्छा होता है, शास्त्र तो लिखता है कि गाय के दूध के समान और कोई दूध नहीं है। बोला महाराज आप ठीक कह रहे हैं, आपने पशु का दूध पूछा ना, गाय पशु तो नहीं है, गाय पशु नहीं है, वो तो देवी है, वो दूध नहीं है, वो तो अमृत है। आप गाय पशु का पूछ रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं, तो गाय पशु नहीं है। और जब यशोदा मैया ने कहा कि बेटा तुम चप्पल पहन के जाओ, अभी खड़ा तुम मोजरी पहन के जाओ, जा रहे हो बहुत दूर तक पहली बार जंगल में गैया चराने के लिए, तो कन्हैया ने कहा गैया की कहां, गैया का चप्पल कहां है, तो गैया को चप्पल क्या करेगा, वो तो पशु है। तो भगवान ने अपना श्रृंगार सब फेंक दिया कि आपने पशु क्यों बोला गाय को, रोने लगी। और यशोदा मैया ने कान पकड़ के कहा बेटा कभी पशु नहीं कहूंगी, गाय माता है, माता है, माता। बोला हमारी पूजनी है, तो भगवान अपनी माता के माध्यम से विश्व को सिखाना चाह रहे हैं कि ये पशु नहीं है। मैं स्टैटिस्टिक पढ़ रहा था, भारत के स्वतंत्र के समय 47 में 30 करोड़ जनता थी और 45 करोड़ से ज्यादा गाय थी। इसका मतलब एक व्यक्ति के ऊपर कम से कम दो गाय से ज्यादा, डेढ़ गाय हो गई समझिए, गाय और उसका बच्चा, ये संख्या थी। और 14 या 15 में 120 करोड़ आदमी हुए और गाय 20 करोड़, सिर्फ 30 से 20 हो गई, होनी चाहिए 1,50,000,000,000, 150 करोड़ होनी चाहिए ना, 120 अगर वो हो गए तो कितना कम हुआ है, कितना गौवंश का विध्वंस हुआ है, ये बहुत बड़ा आघात हुआ है इस संस्कृति के ऊपर। सो गौ गोभीर अलंकृत शब्द जो है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। इस एक को पकड़ के जीवन में अगर चलना है कई जगहों पे हमने देखा जो थोड़े भी सावधान हुए हैं, प्राकृतिक जीवन जीने वाले रोगी कभी नहीं होते हैं और सदा ही योगी रहते हैं और भोगी भी नहीं बनते हैं, क्योंकि प्रकृति के काम करने में इतना परिश्रम पड़ता है कि भोग करने के लिए समय नहीं बचता, ये तो मेहनत का काम है ना। तो न भोगी रहते हैं न रोगी रहते हैं, वो तो योगी रहते हैं। लेकिन जब से हमने अब तो कोई संसार में इस वक्त तो प्राकृतिक जीवन जी ही नहीं रहा है, तो श्रील प्रभुपाद जी ने बात हम ये कर रहे थे, असल में प्रभुपाद जी भी गोलोक धाम भगवान, ये वृंदावन भगवान ने धरती पे भेजा, फिर अपने पर पार्षदों को भेजा इस धरती के ऊपर कि जैसा ये ब्रज का गांव भगवान श्री कृष्ण के समय में था, हर घर के बाहर नहीं तो भी 5-10 गैया बाहर बंधी हुई होती थी और घूम फिर के आती थी, और सुबह सब घर के अंदर से दही के मंथन का आवाज आता था। ये तो उद्धव जब आए थे तब वो सुबह सवेले देखा तो सब घर के अंदर से दही के मंथन का आवाज आ रहा था, बहुत सुंदर, और गीत गाए जा रहे थे कृष्ण के लीला के, और जमुना में कमल खिलते थे, और सब जगह बहुत सुंदर, ये पूरा वन था, ये तो प्राकृतिक वन प्रदेश नाम ही इसका वन है। और श्री प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कह रहे हैं कि जैसे गांव का, जैसे जैसे वृंदावन गांव था, ऐसा गांव का वातावरण हमें वापस बनाना है। तो श्री प्रभुपाद जी ने आध्यात्मिक शिक्षा दी, वृंदावन का चेतना दी, वृंदावन की भावना दी, कृष्ण भावना थी दुनिया को, साथ में श्री प्रभुपाद की इच्छा थी कि वृंदावन की भावना, वृंदावन की सभ्यता, कृष्ण भावना के साथ अब भगवान की प्रसन्नता के लिए गौ, अब हम प्राय जब जाते हैं तो कहते हैं भारत में गौ वध ब्रिटिश के आने से पहले ज्यादा नहीं था, कभी नहीं था, हालांकि 1000 साल उससे पहले मुसलमानों ने यहां राज किया, लेकिन कभी कभार कोई एक आधी गाय ऐसे कट जाए तो दूसरी बात है, लेकिन सरेआम कोस घर तो थे ही नहीं। ये तो ब्रिटिश ने आने के बाद इसको जितना कोस घर बनाए और बढ़ाए, और अपनी आर्मी के लिए वो क्वीन विक्टोरिया ने लिखा है कि आप जो वध कर रहे हो इतना मुसलमान नहीं कर रहे जितना आप अपनी सेना के लिए कर रहे हो। तो मैं रात पढ़ रहा था क्वीन विक्टोरिया का लेटर था लॉर्ड लेंसडाउन को कि गौ वध जितना आप अपनी आर्मी के लिए कर रहे हो उतना तो मुसलमान ने भी नहीं किया है यहां। तो ये जो गो वध शुरू हुआ ये ब्रिटिश शासन के समय में बेसिकली शुरू, उन्होंने क्या काम किया, दो काम किए, एक तो हमारे प्राचीन काल में कल गोपाष्टमी थी उससे हम एक ही शिक्षा सीधी लेते हैं, उसमें दो अंग हैं। पहला अंग है कि बच्चा बाप का 5 साल से बड़ा होता है तो बाप के काम में हाथ बटाता है, बाप ग्वाला है तो बच्चा ग्वाला बनेगा, बाप खेती करता है तो बच्चा खेती करेगा, बाप दुकान चलाता है तो बेटा दुकान चलाएगा, यह प्राकृतिक है। तो श्री कृष्ण ने 6 साल में गैये चराने की बात क्यों की, क्योंकि नंद बाबा गैये चराते थे, तो उन्होंने वो काम शुरू किया, पिताजी को शांति दे दी और काम करने के लिए चले गए, तो यह परंपरा चली आगे। जब से, और ये कहां से सीखते थे सब लोग, ये गुरुकुल से सीखते थे, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, तुम्हारे माता पिता जो करते हैं वही करना है, उनकी सेवा करनी है। ये तो जिस दिन आचार्य शिष्य को गुरुकुल से विदा करता था रोते हुए जब बच्चा जाता था ना, तब ये शिक्षा दी जाती थी। और लॉर्ड मेकाले ने सबसे पहले यहां कहा कि अगर इनकी यह शिक्षा रही यहां, 7000 से ज्यादा गुरुकुल थे भारत में, 18 विद्याएं पढ़ाई जाती थी, कोई अनपढ़ नहीं था। और एक मैं सुन रहा था कि ब्रिटिश के आने से पहले क्या कहते हैं जीडीआर, क्या कहते हैं, क्या रेट, ग्रोथ रेट, जीडीपी 30% था, ब्रिटिश जब यहां से गया 3% भी नहीं छोड़ के गया, और जब वो आया था तो 100% लिटरेसी रेट था, गया है तब 17% भी नहीं छोड़ के गया, 17% भी नहीं छोड़ गया, 100% से इतना नीचा गिरा के गया, और 30 से ऊपर थी जिसको 3 पे लाके खड़ा किया। उन्होंने कहा यह गुरुकुल पद्धति रही जिसमें मुफ्त में पढ़ाई होती थी और वो बच्चा पढ़ के अपने बाप के काम को संभालता था, इसलिए कई ऐसे काम हैं जो अभी तक लुप्त हो चुके हैं। जैसे इनके पूछो अभी घानी लाएंगे, घानी बनाने वाला नहीं मिलेगा, वो नीचे लकड़ी की घानी बनाने वाला नहीं मिलेगा ताकि तेल निकले उसमें से। वो खानदान ही खत्म हो गए जो मिट्टी का बर्तन अलग मिट्टी से, कौन सा बर्तन कौन सी मिट्टी से बनता है। कल मैं पढ़ रहा था कहीं से के जापान, एक तो वहां 100 साल से ज्यादा आदमी ज्यादा हैं बड़ी उम्र के, और बड़ा ईमानदारी का देश में काम है। उसमें एक बात जो बता रहे थे, कौन सी बात अब ध्यान में आ रही थी, बहुत अच्छी बात थी। जो सफाई का काम करता है ना, जिसको हम झाड़ू वाला कहते हैं, उसको वो कहते हैं सैनिटरी इंजीनियर, हेल्थ इंजीनियर, और उसकी तनख्वाह होती है 5,000 से 7,000 अमेरिकन डॉलर। इसका मतलब अगर सफाई वाला आपकी चीजें फर्स्ट क्लास करेगा तो सभी की स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा ना अपने आप। और हम तो उसको कहते हैं ये तो भांगी है। ऐसे हमारे वैदिक काल में जो ये मटके के बर्तन बनाते थे मिट्टी के, उनको इंजीनियर कहना चाहिए था, हमने कुंभार कह के और सारा ही उसका नाम ही खत्म कर दिया। और उसको मालूम था कि कुल्हड़ कौन सी मिट्टी का बनना है, दूध गर्म करने वाली हंडी कौन सी मिट्टी की बननी है, गाय के चारे की कौन सी मिट्टी से बननी है। ऐसे कृष्ण भगवान के जमाने में गाय का, बैलों के भी अलग अलग काम थे कि वो बिजार किसको कहते हैं और खेती करने वाला बैल कौन सा है और गाड़ी जोतने वाला कौन सा है, इसकी अपनी क्लासिफिकेशन, इसका बहुत बड़ा अपने आप में एक विज्ञान है। ये सब अयोग्य से एक जैसा नहीं है, उसका अपना एक बहुत बड़ा रहस्यमय विज्ञान है। भूमि अपने समय में अभी ये महीने आगे आएंगे तो केवल आप गेहूं का फसल ले सकते हैं, और फिर सितंबर अक्टूबर आएगा तो चावल। ये धरती अपने समय से वो क्या उत्पादन होना उसका अपना समय, अपना नियम है, और किसी को ये भी मालूम नहीं है कब कौन सी चीज होती। ये किसान ही खत्म होते जा रहे हैं। ये हैवी मशीनरी ब्रिटिश ने पहले सबसे बड़ा यहां दो हानि की, एक तो गौ हत्या वाला काम बहुत बढ़ा दिया और एक हमारी पढ़ाई की पद्धति का सत्यानाश कर दी। उसका परिणाम क्या निकला है, अभी कोई संगठित परिवार नहीं है। किसी घर में 10 परिवार वाले साथ, हमारा जो साथ रहने वाला परिवार था इसके ऊपर पहला आघात। कोई कहे कि अकेले कोई सुखी रहते हैं, तो भारत में 0% तलाक था, अब वो 30% पे पहुंच गया। ये आज की आधुनिक पढ़ाई का परिणाम है। हम सिर्फ ये इसलिए बात कह रहे हैं कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है बिलिस का, भक्ति वेदांत लर्निंग इंस्टीट्यूट फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, भक्ति वेदांत का मतलब श्रील प्रभुपाद और लर्निंग का मतलब शिक्षा, और शिक्षा का ये केंद्र है काय के लिए कि हम स्वयं पर आधारित कैसे जीवन जी सके। श्री प्रभुपाद जी कहते एक एकड़ जमीन और एक गाय हो तो आपको किसी के आगे हाथ टांगने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में स्वतंत्र अपने परिवार को पाल सकते हो। एक व्यक्ति के पास एक एकड़ जमीन और एक गाय हो तो उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं, वो अपना जीवन बहुत सुखी गुजार सकता है। केवल नमक की जरूरत ज्यादा से ज्यादा पड़ सकती है बस, और किसी चीज की जरूरत की आवश्यकता नहीं है। सो हमारा अनुभव से आपको हम कह रहे हैं, क्योंकि इस प्रयास को बहुत जगह पे हमने किया। हम कह रहे गुरुकुल ब्रिटिश ने यहां खत्म की और श्रीला प्रभुपाद ने अमेरिका में शुरू की। अब देखेंगे ना प्रभुपाद जी ने पहला कदम क्या उठाया, यहां गुरुकुल यहां जड़ से उखाड़ के गया। और मेकाला ने जो लिखा था चिट्ठी अपने बाप को, वो आपको सबको याद होगी। उसके पिता ने उसने लिखा था कि जैसे किसान खेत में हल चलाने से पहले सारे खेत को साफ करता है ना, ऐसे हमने भारत की विद्या पद्धति को साथ कर दिया, साफ कर दिया गुरुकुल विद्या पद्धति को। अब कॉन्वेंट का बीज बोने जा रहे हैं, अंग्रेजी हमारी पढ़ाई बोने जा रहे हैं, और इससे पढ़े हुए दिखने में भारतीय लगेंगे लेकिन उनका दिमाग हमारे तलवे चाटता रहेगा, नौकरी करता रहेगा, और कपड़े भी हमारे उतारे हुए पहनेंगे। मुझे दुख होता है, मैं ब्रिज में जब घूमता हूं यहां तो बहुत सुंदर पगड़ी पहने और धोती पहने हुए लोग होने चाहिए, यहां पैंट कब से आया, उल्टा ये आया कब से? अरे हम तो ऊपर से पहनने वाले कपड़े पहने, ये नीचे से पहनने वाला कहां से आया, आया क्यों और कहां से आया? बहुत जरूरत इस बात की है कि वातावरण को बदलने की जरूरत है। एक बार मेरे ख्याल में किसी एक हमारे स्वतंत्रता के नेता ने इन सब कपड़ों को आग लगाई थी, एक बड़ा ढेर बनाकर, कि जब तक ये गुलामी के कपड़े नहीं उतरेंगे तब तक हमारे दिमाग से गुलामी जाएगी नहीं, गुलामी का हमारे इससे कोई, हम कोई राजनीतिक भाषण नहीं कर रहे हैं, हम सांस्कृतिक को वापस लाने की बात कर रहे हैं। संस्कृति तब वापस आएगी जब संस्कार वापस आएंगे, और ये कोई भारतीय, हम जब बाहर के देश में रशिया आदि में बोलते हैं तो कहते हैं धोती और साड़ी कोई भारत की ड्रेस नहीं है, ये तो आध्यात्मिक जगत की ड्रेस है, ये तो देव देवता देव ऋषि मुनि भगवान ये वस्त्र पहनते हैं, ये वस्त्र कोई भारत की नहीं है, ये तो आध्यात्मिक संस्कृति आध्यात्मिक जगत के ये वस्त्र है। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले दीनबंधु जी का एक लिखा हुआ लेख पढ़ रहा था, अमेरिका में बोलते हम ब्रह्मचारी बाहर कीर्तन कर रहे थे तो एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी से धोती पहना हुआ भारतीय बाहर निकला। अब ये आज से 40 साल पुरानी बात है, तो कोई भारतीय अपनी संस्कृति को वहां भी सुरक्षित रख के बैठा था कि नहीं? हम ग्वालियर गए थे, एक राधारमन प्रिंसिपल वो वाइस चांसलर था यूनिवर्सिटी का, धोती पहन के जाता था रोज धोती पहन के अपने यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल धोती पहन के रोज जाता था। कौन आपको रोक रहा है धोती पहन के जाने के लिए? किसने आपकी धोती उतरवा दी? धोती उतरवाने के बहुत बहुत अर्थ यह है कि आपकी संस्कृति किसने आपसे छीन ली? तो अनुभव की बात यह कह रहे हैं कि हम इतने इस जिस सिस्टम से हम एजुकेशन से पढ़ के आए हैं ना, और जिन सुविधाओं का उन्होंने हमको आदि बना दिया है, ये काम खेत के अंदर हम कर पाए ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हम आधे से ज्यादा बिगड़े हुए, हमारी आदतें इतनी बिगड़ी हुई हैं, इतने हम परतंत्र हो गए हैं, हमको बच्चे चाहिए, यहां बच्चे, यहां 10 कमरे बना रहे हो तो यहां बच्चे 10 पढ़ाने के लिए रखो, उन बच्चों में इतनी शक्ति होती है, ये सारा खेत वो एक दिन में थी आपको, उनमें ताकत होती है, हम तो कचरा है, अभी किसी काम के नहीं है, वो काम कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन का ये हिस्सा होता है। गुरु के आश्रम में सब चीजें अपनी बन जाती है तो बच्चे काम करते हैं। जब तक हम अपनी नई पीढ़ी को ये शिक्षा नहीं देंगे तब तक ये काम सफल, इस काम में सफल होना इतना संभव नहीं है। हमने सब जगह देख लिया, पूरी दुनिया में अच्छी तरह से देख लिया, हम आइडिया तो बहुत कर दे सकते हैं लेकिन काम कौन करेगा? रहेगा कौन गाय के साथ, रहेगा कौन खेत के साथ? वो बच्चे रह सकते हैं, उनको उसी माहौल में पैदा करो, 6 साल का बच्चा यहां बिठा दो और 15 साल तक वो ये आपके सारे काम को समझ जाएगा, उसी को कहीं किसी यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर की डिग्री लाने की जरूरत नहीं है, और वो यहां ऐसा काम करके दिखाएगा जो आपका और कोई नहीं कर सकता। उसको शिक्षा देनी है। जब तक हम ये एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेंगे तब तक ये हमारा रिवोल्यूशन जो हम चाहते हैं, रिवोल्यूशन क्या चाहते हैं हम, संस्कार पूरे विश्व को प्रभुपाद ने कहा हमने इस्कान सुखी करने के लिए बनाया है, तो स्वस्थ होगा तब सुखी होगा, और स्वस्थ होने के लिए खाना जरूरी है, और खाना इस वक्त जहर खा रहे हैं। हमारी दो पीढ़ियां पहले थोड़े से लालच के कारण जहर मिला दिया खेतों के अंदर, धान ज्यादा हुआ, मकान पक्के हो गए, लेकिन आने वाली पीढ़ी बेकार हो गई, आने वाली पीढ़ी बेकार हो गई। बहुत बड़ा अपराध हो गया हमारे बड़े बुजुर्गों ने लालच के कारण यह काम किया। जब कच्चा मकान था तब पंखे की जरूरत नहीं थी, बिजली की जरूरत नहीं थी, अब पक्का मकान हुआ तो खर्चा भी बढ़ गया। वो अच्छे मिट्टी के मकान थे, जब एक दूसरे के लिए प्रेम था, वो सब कहां चला गया। इस सुविधाओं ने हमको इतना सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब क्या है, स्वार्थी बना दिया है कि बेटा बाप की सुनने को तैयार नहीं है। इसने स्वार्थी बना दिया है। पहले परमार्थ कितना था, अरे गांव में किसी एक के घर में मृत्यु हो जाए तो पूरा गांव काम पे के लिए जाता था, उसको चिंता नहीं होती थी। गांव के अंदर पूरा गांव सब काम साथ करता था, एक पूरा परिवार हुआ करता था। एक बेटे को मालूम है पूरे गांव वाले मेरे चाचा है, अब चाचा कोई नहीं कहता, जब से अंकल किया तब से सबका काम पूरे, आंटी किया तो काम खत्म हो गया, ये अंकल आंटी कहां से आ गई, चाचा चाची कहां चले गए, संस्कार ही समाप्त हो गए, भाषा ही समाप्त हो गई। तो ये जो कार्य यहां होने जा रहा है, एक रोल मॉडल के स्वस्थ सुखी होने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है, और स्वस्थ होने के लिए जो खान पान है वो शुद्ध होना चाहिए। ये ट्रैक्टर ने तो इस धरती को इतना दबा दिया, इतना दबा दिया, इसके अंदर से अब वो सांस नहीं ले रही है, धरती तो कहां से पैदा करेगी। आपको कोई गला दबा दे फिर आपको कहो कि अब आप बोलो या खाओ, कैसे खाओगे, कैसे बोलोगे। तो इतना भार से ये जो हैवी मशीनरी है इसने इतना धरती को दबा के इसका सांस बंद कर दिया है, और दूहे से सबका दिमाग खराब कर दिया, और तेल के पैसे से सबका तेल निकाल दिए। और पहले अपना बैल खेती करता था, गोबर उधर डालता था तो खाद भी हो जाती थी, और कोई पैसा खर्च नहीं, अपना ही घास जाके खा के आ जाता था, और खेत नहीं खाता था, कोई खर्चा थोड़ी लगता था। तो बहुत बड़ा एक संस्कार, और उसमें लालच नहीं थी ना। ये तो बड़े बड़े जमींदारों ने वो पैदा किया, बदमाशी पैदा की वो बड़ी मशीनें लाने की नहीं। हर एक आदमी के पास दो चार एकड़ जमीन हो, अपना परिवार सुखी गुजारे, किसी की जरूरत नहीं है, आवश्यकता से ज्यादा दे के जो चीज चाहिए वो बाजार से लेके आ जाए, बस बात खत्म हो गई। ये पैसा जब से आया है, नोट जब से छपे हैं तब से किसी आदमी को किसी के साथ, नोट ने वोट को लाया, और वोट के बाद सब कुछ लूट खसोट हो गया। नोट वोट लूट खसोट, ये जब नहीं था तो सोना चांदी था, तो आदमी भी सोने चांदी जैसे थे। तो बड़े बड़े स्वभाव में अच्छे थे, एक दूसरे का सहयोग करने वाले। तो ये काम जो यहां किया जा रहा है, ये काम कोई पूरी दुनिया को बदलेगा नहीं, लेकिन ये दिखाने के लिए कि ऐसा करने से आप जहां रहते हो वहां अच्छा परिवर्तन ला सकते हो। इस ब्रज में जो परिवर्तन आ जाएगा तो पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। ये भगवान का धाम है, इसमें असल में अभियान चलाना चाहिए, संस्कृति को वापस लाना चाहिए। ये एक जो हमारे ये बहुत बड़े हितेशी जिन्होंने ये धरती अपनी दी है, क्या नाम है इन भैया का, राजकुमार जी, प्रयास करते हैं कि इसको ऐसा रोल मॉडल बनाए कि पूरे ब्रज में ऐसे ही ऐसा माहौल पैदा करना है। सब जगह गैया रंभती नजर आए, घर में बिलोना होता हुआ नजर आए, दही मंथन होता हुआ नजर आए, और वस्त्र आभूषण जैसे पुराने ब्रज में था ऐसा माहौल पैदा करें। बाहर से लोग आते हैं तो वो देखें कि हम ब्रज में आए हैं, ऐसा माहौल। ये भगवान की इच्छा है, ये भगवान की इच्छा है, तब ये योजना श्री प्रभुपाद जी हमारे को देके गए हैं कि 50% काम गौ रक्षा और कृषि, इन दोनों को अच्छी तरह से, और जो धरती से और गाय से जुड़ा नहीं है वो कृष्ण से जुड़ नहीं सकता। तो ब्रजवासियों को भी ठीक तरह बताना चाहिए, जो ब्रज में भगवान ने उनको वास दिया है, जहां गाय नहीं और जहां धरती नहीं वहां कृष्ण नहीं। वो माखन चोर था, किसी घर में आता है क्या आजकल, माखन है ही नहीं तो आएगा क्या खाने, माखन है ही नहीं तो खाएगा क्या, आए तो आए कैसे, माखन भी नहीं है, गैया भी नहीं है, तो बहुत आवश्यक है कि बैल से खेती करना, अपना पूरे संस्कार वापस लाना और घर घर में भागवत का पाठ हो। सुबह बच्चे उठे तो, और बच्चों की स्कूलों की शिक्षा, ये स्कूल है सारी यहां बिल्डोजर घुमा देना चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए, और कुटियाओं के अंदर बच्चों को, ताकि वो ये खेती को अपनी संभाले। अपना पूरे विश्व का जो है कल्याण तब होगा। अस्पताल रोज नहीं बन रही है, लोग मर रहे, बीमार हो रहे तब बन रही है ना। अब बहुत अच्छा ब्रज में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ गया, क्या जरूरत थी? हमने बीमार बनाया, कोई अच्छा काम हुआ क्या? उद्घाटन करने मंत्री आ रहा, किसका हॉस्पिटल का, कोई अच्छा काम है क्या? टांग टंगी हुई है किसी की, टूटी हुई है किसी के गले में रस्सी डली हुई है, क्या देखने जैसी है? उसका उद्घाटन करने के लिए दुनिया कटी होती है, ये कोई काम है? अरे इसका उद्घाटन करने के लिए आना चाहिए प्रधानमंत्री को। ये प्राण है देश का, ये ऋषि प्रधान भूमि है, और जहां ऋषि रहते थे वहां हजारों शिष्य, 10,000 शिष्य जिस ऋषि के पास है उसको कुलपति कहते थे, और वो सब खेत उनके पास। आज भी देखो पुरानी संस्कृति, हर मंदिर के 50-100 एकड़ जमीन है, हर मंदिर की, हर सेवा देवालय की मंदिर है। आज भी पूरे भारत की अगर भूमि देखेंगे तो संत महात्माओं की भूमि ज्यादा है, सरकार से भी संत महात्मा। द लैंड बिलोंग्स टू द सेंट्स मोर देन एनीबडी एल्स। मठ मंदिरों की, संतों की भूमि ज्यादा है। गौचरण भूमि कहां चली गई? ये जो गौचर हुआ करता था हर गांव के बाहर, 2-2 किलोमीटर गाय के चरने की जगह थी, वो कहां गई? अब गाय कहां चरने जाए? नहीं चरने जाएगी तो मरने जाएगी, और क्या करेगी? वैसा कानून बना दिया ब्रिटिश ने, गौचर भूमि है लेकिन आप उसको रख नहीं सकते। अब वो कहां चली गई? हम नाम ही, हमारे को मालूम है गांव के बाहर कहां जा रहे, भले गौचर से आगे जाना है, गौचर को छोड़ के आगे जाना, लकड़ी भी आगे से लाना है। ये गाय के चरने की भूमि, उसका नाम गौचर था। गाय कोई बंधी हुई नहीं थी, हमने अपने घरों में कभी गाय को बंधी हुई नहीं देखी है। गाय सुबह दूध निकाला, बाहर गई, ग्वाला ले गया, घुमा के शाम को वापस आई, अपने आप घर में आई, दूध निकाला, खिलाया। मेंटेनेंस था ही नहीं गाय का, खा जंगल में खा के आती थी गौचर से। दूध देने वाले गाय को थोड़ा सा ग्वार दे देते थे, बस हो गया, बहुत प्राकृतिक था। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। सो इंद्र, हमारा इंद्र नीलमणि और उनका सारा ये संग, आप सब लोगों के सहयोग से यहां एक उदाहरण कि कृषि और गौरक्षा का छोटा सा मॉडल बनाना चाहता है, जिसके माध्यम से पूरे विश्व को, ये तो ऐसा है जैसे टैगोर जी को ने लिखा था कि जब सूर्य अस्त हो रहा था तो सूर्य कह रहा था मेरे जाने के बाद अब कैसे प्रकाश होगा, तो एक दीप ने कहा था जितनी मुझ में शक्ति है मैं प्रकाश देने का प्रयास करूंगा। तो ऐसे नहीं कि अब इस छोटे से कृषि के इस अभियान से पूरे विश्व को एक प्रकाश देने का योजना है, और ऐसे कुछ और सहयोगी मिल जाएं, और हाईवे से मिलती हुई, दिल्ली वाले रोड पे हाईवे से मिलती हुई और कोई स्थान हो तो उसमें ज्यादा लोगों को वृंदावन से आते जाते जाके दिखाया जा सकता। यहां से लाने के लिए हमें डबल परिश्रम करना पड़ेगा।
यूनिवर्सिटी के पास में ऐसी जमीनें कुछ हैं, बहुत सस्ते में मिल रही हैं।
नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरफ लाने के लिए एग्जर्शन डबल होती है, टाइम उनके पास नहीं है, वो तो आते जाते बीच में हम उनको हाल्ट कराने के लिए। ये हमारा रोल मॉडल बनने चाहिए, क्योंकि यहाँ को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, वहां तो फिर सारा दिन डिस्टर्बेंस होगा। ये रोल मॉडल बने लेकिन उस तरफ जितनी होगी, ताकि इसकी जागृति विश्व में जानी चाहिए। और हम तो बाहर देशों में जाते हैं, लोगों को कहते हैं भैया आने वाले 50 साल के बाद तुम्हारे पास भले पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लेकिन खाने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा,
खाना नहीं होगा,
और नहीं पेट्रोल वेट्रोल खत्म हो गया तो कहीं से कुछ आएगा नहीं, तो करोगे क्या? इसलिए अगर चार पैसा है तो दो चार एकड़ जमीन कहीं लेके रख लो, उधर जाके रहोगे तब बच पाओगे, नहीं तो मर जाओगे। अभी से अपनी लेके रख दो, अगर किसी को भगवान ने थोड़ा सामर्थ्य दिया है और कोई यहां बेचे नहीं तो अच्छा है, अपनी संभाल के रखो भाई। ये पैतृक जो धन है, ये पहले तो कहते थे गाय धन था, गौ धन था, गौ बहुत बड़ा धन था, ये अचल, ये चल प्रॉपर्टी, चल प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ये अचल धरती है और गाय पशु पूरा ये हमारा धन हुआ करता था। हमारे बुजुर्ग कहते हैं हमारे कितने 500 गाय हैं, 200 ऊंट हैं, ये हमारा धन था। मैं बैंक में, बैंक वाली मेरे को एक अच्छा सा एक मैसेज आया था, आपके जेब में 100 रुपया है, आप एक साल रखो, 100 रुपया 100 रुपया ही रहेगा, बैंक से आप ट्रांजेक्शन करो एक साल के बाद 100 रुपया आपका 70 हो जाएगा, क्योंकि वो कमीशन खाते खाते और 5 साल के बाद 100 रुपया मर जाता है अपने आप, और अपने जेब में 100 रुपया 10 साल तक भी 100 रुपया रहेगा। नहीं तो इतनी बड़ी बैंकों की बिल्डिंग है और बैंकों के ऑफिसों के पैसे किसे, ये हमारे पैसे को खा रहे हैं ना, ये हमारे 100 रुपये को चूहे की तरह खा रहे, ये हमारे 100 रुपये को चूहे की तरह खा रहे, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम बड़े खुश हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित कहां है, चूहे खा रहे, वो कट रहा है रोज, वो दिखाते हैं 2.5% इंटरेस्ट, लेकिन उसके बीच में वो चेक के पैसे में भी हमारे को चेक कर देते हैं। ये गाय खड़ी है क्या खाएगी, अगले साल में डबल कर देगी, एक दूसरी आ जाएगी, आपका धन साल में डबल होगा, ये कहीं से होगा नहीं होगा। तो अपना पैसा सब ऐसे, ये पहले ये हमारा धन, हमारे बूढ़े बुजुर्गों के पास ये चिट्ठा लिखा होता था कि हमारी इतनी गाय उधर, और मेंटेन नहीं करनी थी, भले शहर में रहो, ये गांव वाले भैया के 7 एकड़ जमीन पर ही है ना, इसके पास 10 गाय छोड़ देते थे, एक बछड़ा तुम्हारा, एक पहला जो बच्चा हुआ तुम्हारा, दूसरा हमारा, एक तुम्हारा एक हमारा, तुम इसको पालो, जब दूध दे तब हमारे घर में दे के जाना। तो एक नेचुरल सिस्टम बना हुआ था। तो ये जितना कारपोरेट वर्ल्ड आया है, इसने संस्कृति और संस्कारों का सत्यानाश कर दिए। अच्छे से फैसिलिटीज रहने की है लेकिन जीने की नहीं है, जीना खत्म हो गया, जो सुख से एक जीना था वो खत्म हो गया। तो बहुत आवश्यकता है संस्कारों को वापस लाने की। ये अलंकार है, गाय अलंकार है, इकोनॉमी नहीं है। आप देखो भगवान को भोग कैसे लगाओगे जब आपके पास गाय का दूध नहीं, दही नहीं, घी नहीं, तो लगाओगे कैसे भोग? अब जो कुछ हम कह, प्रसाद जिसको कह रहे हैं, वो प्रसाद है कि नहीं है, इसको कौन, भगवान ने इसको ग्रहण किया क्या? बहुत बड़ा ये प्रश्न चिन्ह है। ये अन्न भी उत्पादन अपना हो, हर मंदिर को अपना सारा, सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटीज हो, फार्म की काम करने वाले हो। ये प्रभुपाद जी अंत समय तुम्हारे कृष्ण महाराज कह रहे थे, प्रभुपाद जी आप ठीक हो जाएंगे, हम हर मंदिर के साथ एक फार्म बना देंगे और हमारे अपने फार्म से हमारे मंदिर की सब जरूरतें पूरी होगी। इसके लिए असल में बहुत कुछ हमारे लिए, अब मैं वही कह रहा हूं दोबारा कि हम इतने इस मॉडर्न सुविधाओं ने, मॉडर्न फैसिलिटीज ने हमको इतना डल कर दिया है कि हम एक्चुअली इस तरफ सोच भी नहीं सकते कि ये हमें काम करना है। रियली स्पीकिंग, अब लीडरशिप भी हमारी में कोई इस तरफ सोचने की योजना ही नहीं है। लेकिन इतनी ऑर्गेनाइज हमारी संस्था है, इतना हमारे पास मैन पावर है, हम कुछ करना चाहें तो पूरा वर्ल्ड, प्रभुपाद ने 18 दिन में पूरे वर्ल्ड को हम कॉन्कर कर सकते हैं, लेकिन हमारी एनर्जी सारी कहां ड्रेन हो रही है वो हमको समझ में नहीं आ रहा। बहुत बड़ी समस्या है, इसको इसकी आवश्यकता है लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं। इसमें कोई इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट पैसा नहीं है, टाइम इन्वेस्ट कर, सोच इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं। करना चाहे तो कुछ कोई मुश्किल नहीं, और जहां पड़ी है वहां भी नहीं कर पाते हैं। प्रभुपाद जी जाके उद्घाटन करके आए थे हैदराबाद के नैमिषारण्य फार्म, उसका नाम दे के आए थे, 100 एकड़ जमीन किसी ने दान में दी थी और हम एक उसके अंदर उगा नहीं पाए, वो हम आदमी ने वापस ले ली। आप 30 एकड़ पड़ी है वहां भी हम वो मल्टी स्टोरी गेस्ट हाउस बना रहे हैं। अरे उधर खेत बनाओ, उधर कोई गेस्ट हाउस की जरूरत है? समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत आवश्यकता है डेडिकेशन की, लेकिन हम सब भावुक हो सकते हैं, करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन करने वाला कहां से लाओगे? और इसलिए सबसे बड़ा दूसरी परेशानी, अभी इस वक्त कौन कह रहा था मुझे, ऑस्ट्रेलिया वाला कह रहा था, दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए गवर्नमेंट 7,000 पाउंड दे रही है, आज दे रही है, एक बच्चा पैदा कर, क्योंकि आदमी नहीं, बच्चे नहीं, लाएंगे कहां से? तो चला एक बाप का माल संभालेगा कौन? चाइना की ये परेशानी हो गई, अब हमारे यहां बीमारी है, एक बच्चा है, उसको कहां से अब करोगे क्या? हरे कृष्ण, धन्यवाद।